श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुगराश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। आप लोगों ने कई बार इस श्लोक को सुना होगा, यथा तरोर्मूलनशिश्चनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां सर्वाहरणम् अच्युतेज्य। तो जिस प्रकार से पेट में खाना देने से सभी इंद्रियों को मिल जाता है, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में जल देने से हर पत्ती को मिल जाता है, हर शाखाओं को मिल जाता है, उसी प्रकार से अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा करने से सभी देवता संतुष्ट होते हैं, उन सबकी पूजा हो जाती है। तो अभी देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से अर्जुन इस कथन को साक्षात मूर्तिमान रूप में देख रहे हैं कि कैसे सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के विराट रूप में ही स्थित हैं, और इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करके व्यक्ति सभी देवताओं को संतुष्ट कर लेता है। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य स्वर्प को जिस पर गर्भोदकाशय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड एक अंडे के समान है और उसमें आधे भाग में जल भरा है और उसके ऊपर गर्भोदकाशय विष्णु भगवान शयन करते हैं, और वो एक सर्प की सैया जिसे कि शेषनाग आप जानते होंगे, उसके ऊपर वो शयन करते हैं। तो उस दिव्य सर्प को भी अर्जुन ने देखा। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकाशय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का दृश्य को देख पाना असंभव है, और देखने की कल्पना या देखने की इच्छा भी कर पाना असंभव है। वो इच्छा भी नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है, क्या क्या है विराट रूप का मतलब, लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन ने देखा। और किसी के पास आज तक ये शक्ति भी नहीं रही जिसने कि वो विराट रूप का दर्शन इस प्रकार से करा सके। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्य को विराट रूप का दर्शन कराया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात भगवान कृष्ण हैं। अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम नान्तम न मध्यम च न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। एक अद्भुत बात यह है कि भगवान के हाथ, पेट, मुंह, आंखें सब जगह हैं। इसका हम लोग और एक अर्थ बड़ा प्रेरणादायक ये है कि भगवान अपने विग्रह के रूप में भी पूरे विश्व में व्याप्त हैं, और भगवान उसके द्वारा हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। और ये भी जान लेना चाहिए कि भगवान सभी चीजों के साक्षी हैं। जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो भगवान सब देखते हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समंताद दीप्तानलार्कादितिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तू भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। एक चीज आपको आश्चर्य में नहीं है लग रहा है, क्या हम लोग कभी सूर्य को उसके तेज से अलग कर सकते हैं? आप फिर इस बात को मैं रिपीट करूंगा, क्या हम लोग किसी प्रक्रिया से सूर्य को उसके तेज से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज भगवान अपनी इच्छा अनुसार संवरण कर लेते हैं या फिर प्रकाशित करते हैं। जब विराट रूप प्रकाशित करना पड़ा तो भगवान ने अपना तेज प्रकाशित किया, लेकिन जब अर्जुन के संग लीला करते रहते हैं एक सामान्य मित्र की तरह, तो उस समय अपना तेज प्रकाशित नहीं करते, अपना भगवत्व प्रकाशित नहीं करते हैं, अन्यथा प्रेममय संबंध में विघ्न आ जाएगा। हम भगवान को देख ही नहीं पाएंगे तो सेवा क्या करेंगे। उसी प्रकार से भगवान का विग्रह है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह समझाते हैं चैतन्य चरतामित में, कि भगवान का विग्रह भी भगवान के ही समान अचिंत शक्ति से विभूषित है। लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उस शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिदाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुरिथैवाञ्जस संप्रयुक्तम्। जिस प्रकार से एक आँख जो है वो अंजन के द्वारा, एक ऑइंटमेंट बोलते हैं, अंजन लगाने से वो देखने में समर्थ हो जाती है, उसी प्रकार से जितनी मात्रा में हमारा हृदय या जीव जो है उसका सत्ता भगवान के श्रवण कीर्तन से शुद्ध हो जाती है, उतनी मात्रा में वो भगवान के सूक्ष्मत्व को समझ पाता है। तो ये एक अद्भुत गुण हम भगवान का देख रहे हैं कि जब चाहें वो अपने तेज को प्रकाशित कर सकते हैं और अपने तेज को संवरण यानी कि छुपा भी सकते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सुंदर, यही चीज हमने श्रीमद् भागवत में भी सुना है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। तो वस्तु मतलब जो चीज सत्य है, तो भगवान तीनों काल में हमेशा रहते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि आप ही जानने योग्य वस्तु हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अधोक्षज हैं और हैं भी, इसलिए उन्हें कभी जाना नहीं जा सकता। ना, ये गलत तरीका है। भगवान अधोक्षज हैं लेकिन इस कारण से उनको भौतिक इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भगवान आदि पुरुष हैं और वही ज्ञेय वस्तु हैं, वही जानने योग्य हैं, बाकी कुछ जगत में जानने योग्य है ही नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति मापना चाहे कि मृग मरीचिका अर्थ होता है जब हम लोग कहीं गर्मी में देखते हैं रोड में आगे जाकर के कहीं पानी दिखाई पड़ता है, तो अब कहे कि कोई व्यक्ति सोचे कि भाई इस मृग मरीचिका में कितना पानी है, तो ये कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है, विषय नहीं है। लेकिन अमृत के सागर कैसा है इसको जरूर जानना चाहिए। आप समझ रहे हैं, भगवान रस के अमृत हैं, रसामृत हैं, रसामृत के सागर हैं, तो वही जानने योग्य व्यक्ति हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, जानने योग्य वस्तु क्यों है? क्योंकि जीव भगवान को जान करके आनंद को प्राप्त होता है। रसो वह सह रस लब्ध्वा आनंदम भवति, कि भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं और भगवान को जानने के लिए बाद ही व्यक्ति जीव जो है वो आनंद को प्राप्त करता है। तो इसलिए जानने योग्य वस्तु भगवान ही है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार और आश्रय हैं, ये तो हमने चर्चा कर ली थी नवे अध्याय में भी, कि भगवान अहम सर्वस्व प्रभु बोलते हैं, सभी वस्तुएं भगवान कृष्ण से ही आ रही हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्या भगवान से सब कुछ आया है तो क्या भगवान खाली हो गए? नहीं, जब सारा जगत भगवान से आने के बाद भी भगवान अव्यय रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते, और पुराण पुरुष हैं यानी कि आदि पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो इसी प्रकार से भगवान को स्वीकार करना चाहिए, हमें अर्जुन का मत स्वीकार करना चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, सनातन धर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जब भी समाज में भक्ति का लोप होने लगता है तो भगवान उस धर्म के पालक होने के नाते भगवान स्वयं ही आते हैं और इस धर्म की संस्थापना करते हैं, ताकि जीव सीख सके अपना धर्म भगवान के प्रति, कर्तव्य भगवान के प्रति, और इसके द्वारा लाभान्वित हो सके। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। षड ऐश्वर्य का मतलब है छह ऐश्वर्य, यानी कि ज्ञान, बल, सुंदरता, धन, वैराग्य और यश। तो भगवान के पास इस छह यश जो हैं वो असीमित मात्रा में हैं। यहां पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान की महिमा पवन परम पावन है। जब कोई व्यक्ति भगवान की महिमा को सुनता है तो वो पवित्र होता है और उसे पूरा जगत पवित्र होता है। तो बार बार श्रवण करना उसी महिमा को, इसमें कोई साहित्यिक दोष नहीं है, ये बल्कि भक्तों के लिए आनंद का कारण है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, ये कोई दोष नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जब कोई आप आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं या आश्चर्यजनक घटना सुनते हैं तो उसको बार बार देखते हैं, उसको बार बार चर्चा करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के इस आश्चर्यमय दृश्य को देख करके अर्जुन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और इसी कारण से भगवान के गुणों को बार बार आख्यान कर रहे हैं, थोड़ा रिपीटेशन भी हो रहा है। आप लोग कहेंगे, अरे भाई एक बार बोल दिया दोबारा क्यों बोल रहे हैं, कारण वही है, इतना आश्चर्यमय है। एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव मुंह पूरे विश्व में व्याप्त हैं और यदि हम ऐसे देख पाए तो क्या आश्चर्य से भर नहीं जाएंगे। तो इसी कारण से भगवान के गुणों की पुनरुक्ति यहाँ पे हो रही है, कह सकते हैं एक्सटेसी के कारण, अष्टसात्विक विकार जिसे कहा जाता है। द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकं लोकत्रयम् प्रवितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। इस श्लोक में द्यावा आ पृथिव्यो धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा। ध्यान देना चाहिए कि जो महाभारत में उपस्थित लोग थे उन्होंने नहीं देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न ना था, अर्थात ये कोई हेलुसिनेशन या मोह नहीं था या माया नहीं थी भगवान की। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध रूप में इस विश्व रूप को देखा। तो यानी किंचित मात्र कुछ भक्त हो सकते हैं जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी हो और वो लोग देख पाए, लेकिन सामान्यतः इस विश्व रूप को लोग नहीं देख पाए। तो आगे के हम लोग श्लोकों पर चर्चा जो उनकी अर्जुन की है वो हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।